نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بھائی چلا چھرت بند کرو، اب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. یہ باہر جانے والا مجمع ہے، کہاں جا رہے؟ بازار میں ہی تھے، کچھ دیر کے لیے آئے ہو یہاں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. دوستو، قابل احترام بزرگ ہو، پیارے بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ ہم سب کو اپنی قدرت سے اس دنیا میں لایا ہے، اور ہمارے لانے میں حق تعالی شانہ نے تنے تنہا اللہ کی قدرت پورے عالم کے بنانے میں لگی. حق تعالی شانہ کو اس کے بنانے میں کسی سے مشورے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور کسی سے مدد کی ضرورت پیش نہیں آئی. اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا اتنا بڑا، بغیر ستون کے، بغیر لٹکائے، بغیر اٹکائے، اتنی بڑی زمین اللہ نے پھیلا دی، پہاڑوں کو بنایا، سمندر کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور اس میں قسم قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور یہ تمام مخلوقات کو تنے تنہا اللہ نے بنایا. تمام جانوروں کو، چھوٹے بڑے سب جانوروں، ان سب کے بنانے کے بعد اللہ نے پھر اس انسان کو بنایا، اور اس انسان کو بنانے کے بعد حق تعالی شانہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ انسان، یہ سب کچھ جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، جو کچھ بنایا وہ تیرے لیے. زمین زمین کے اندر میں جو کچھ ہے، آسمان آسمان کے اوپر جو کچھ ہے، ستارے ستارے کے اندر میں جو کچھ نظام ہے، یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے یہ انسان میں نے اپنے لیے بنایا ہے. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، اتنی بڑی زمین مجھے سہار نہیں سکتی، اتنا بڑا آسمان مجھے سہار نہیں سکتا، لیکن ایک مومن بندے کا دل ہے جو مجھے سہار سکتا ہے. ولکن یسعنی قلب عبد مومن، اس لیے اللہ نے اس انسان کو بڑے ہی ناز سے بنایا، بہت ناز سے بنایا، اسے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے تو اس کے پورے انتظامات کے ساتھ اس کو بنایا، اپنی کاریگری کو دکھایا ہے اس انسان کو بنانے میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی ایک ایک چیز کو ایسی فٹ کی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جگہ اس کی جگہ یہاں سے واہ ہوتا تو اچھا. ہر چیز ایک ایک چیز کو فٹ کیا ہے. لقمہ آدمی اٹھاتا ہے، کتنا بھی مشغول کھانے میں ہو، باتوں میں مشغول ہو، لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ اٹھتے ہی قدرتی طور پر آنکھ اس پر چلی جاتی ہے، ہاتھ اسے محسوس کر لیتا ہے، ہاتھ اسے محسوس کر لیتا ہے، پھر جہاں نگاہ بتا دیتی ہے کیا ہے، لیکن نگاہ یہ نہیں بتائے گی کہ لقمہ اچھا ہے یا خراب ہے. منہ میں جانے سے پہلے ناک اس کا ٹیسٹ کر لیتا ہے، मुंह में जाने के बाद में फिर वो चीज उसके अंदर में होती है। ये सारी चीजें तने तनहा अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाई, इस इंसान को बहुत ही इकराम के साथ बनाया और फिर इस इंसान को अल्लाह दुनिया में लाया। हालांकि इंसान को इतना मकाम दिया, ये अपनी जात से बहुत इंसान गंदा है, नापाक कतरे से बना है, नापाक जगह से बाहर आया है, दुनिया में है तो एक अल्लाह ने इसके ऊपर में चमड़ी डाल दी, इसके कान में उंगली डालो तो गंदगी निकलेगी, नाक में उंगली डालो तो महबूब से महबूब आदमी भी ये नहीं पसंद करेगा कि किसी के नाक में उंगली डाल के उसके कपड़े से लगाई जाए, मुंह में कोई चीज डालो मुंह से निकालो गंदी, इसकी चमड़ी अचानक किसी वजह से फट गई तो आदमी खुद अपने कपड़ों को बचा लेगा, खून मुझ पर न, अपना खून मुझ पर न गिरे, इसे चीरो तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, बलगम सौदा ईद क्या है इस इंसान। लेकिन अल्लाह ने इस इंसान को कहा है कि तेरे अंदर में मैंने दो चीजें रखी, अगर तू अपनी जात पर मेहनत करेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा और अगर तू अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ देगा तो बहुत नीचे चला जाएगा। चूंकि ये मिट्टी से बना है, ये इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी की सिफात इसमें है, जमीन है, इस जमीन पर मेहनत की जाती है, सरसब्ज बनती है, इसी में से गेहूं निकलता है, इसी में से मकई निकलती है, इसी में से सेब के बाग बनते हैं, इसी में से संतरा के बाग बनते हैं, इसी में से मौसमी निकलती है, इसी में से जाफरान निकलता है, इस जमीन पर मेहनत की जाती है तो जमीन क्या से क्या चीजें अपने अंदर से निकाल कर बाहर करती है। और अगर इस जमीन पर मेहनत छोड़ दी जाती है तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर इस जमीन के अंदर से बिगाड़ की और मुसीबत की चीजें निकलती। इस जमीन को आप छोड़ दो एक साल के लिए, बंजर नजर आने शुरू हो गए, और एक साल छोड़ दो तो छोटे छोटे कांटेदार दरख्त निकलना शुरू होंगे, और छोड़ दो वो दरख्त बड़े होंगे, और छोड़ दो इसमें कहां से लाने नहीं पड़ेंगे, कांटेदार दरख्त लाने नहीं पड़ते, मेहनत छोड़ दो खुद ब खुद निकलते। फिर जहां कांटेदार दरख्त हुए तो चूहे लाने नहीं पड़ते, चूहे खुद आ जाते, और इस पर मेहनत छोड़ दो और एकड़ों में नहीं बल्कि किलोमीटरों में अगर बड़ा जंगल बन गया तो फिर इसमें सांप निकलते हैं खुद ब खुद, कहीं से सांप लाने नहीं पड़ते, बसाने नहीं पड़ते, पीछे निकलते हैं। और बड़ा जंगल हो गया इसमें चीता आएगा, कहां से आया वल्लाह वाला, कोई म्यूजियम से लाकर रखा नहीं जाता, इसमें शेर आ जाते, फाड़ खाने वाले जानवर इस जंगल में आ जाते। एक ही चीज की क्या है, इस जमीन पर मेहनत छोड़ दी तो खुद ब खुद चीजें निकलनी शुरू हो गई, बिगाड़ की मुसीबत की इसी। ये मिट्टी के सिफात है, ये जमीन के सिफात है, ऐसे ये इंसान है, इस इंसान को ये अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ देता है, कायनात पर मेहनत करता है, जमीन पर मेहनत करता है, जमीन सरसब्ज होती है, कारखाने पर मेहनत करता है, कारखाने बनते हैं, कपड़ों पर मेहनत करता है, कपड़े बनते हैं, फैक्ट्रियों पर मेहनत करता है, फैक्ट्रियां बनती है, कारें बनती है, लेकिन ये इंसान बनता है उस पर मेहनत की जाती है, ये मिट्टी से, ये अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ देता है तो चूंकि इसके अंदर में दो चार निस्बतें हैं इस इंसान में, पहली निस्बत दुनिया में पैदा होते ही हर इंसान हैवान है, जानवर, जानवर के सिफात इसमें है, जानवर खाता है, जानवर पीता है, इंसान भी खाता है, इंसान भी पीता है। जानवर को जोड़े की जरूरत है, इस इंसान को भी जोड़े की जरूरत है। जानवर को सर्दी लगती है, इसे भी सर्दी लगती है। जानवर को गर्मी लगती है, इसे भी गर्मी लगती है। जो चीजें हैवानियत की हैवान में है, वो इंसान में भी। तो ये खुद बखुद ये आई है इसके साथ। अब अगर ये मेहनत अपनी जात पर नहीं करता तो हैवानियत और जानवरपना इसमें पनपता है। ये जानवरपने में आगे बढ़ता चला जाता है, अपनी जात पर मेहनत नहीं करता। जैसे जमीन पर मेहनत न करने की वजह से अपनी जात पर मेहनत नहीं करता तो जहालत खुद बखुद आती है। जाहिल बनने के कोई मदरसे नहीं होते, जाहिल बनने की कोई स्कूल नहीं होती। कहीं आपने बोर्ड नहीं देखा होगा, ये जाहिल बनने की स्कूल है। बदअखलाक बनने की कोई स्कूल नहीं होती। कोई मां बाप अपने बच्चों को बदअखलाकी सिखाते नहीं है। बस वो तो यही, उस पर उस बच्चे पर मेहनत करना छोड़ दो, ये बच्चा खुद ब खुद बदअखलाक बनेगा। इस बच्चे पर मेहनत करना छोड़ दो, ये बच्चा खुद ब खुद जाहिल रहेगा। इस बच्चे पर मेहनत करना छोड़ दो, ये बच्चा खुद ब खुद गालियां देगा। जैसे जमीन। लेकिन मसला यहां तक नहीं रहता। अगर ये अपनी जात पर मेहनत नहीं करता तो हैवानियत में तरक्की करता है, जानवरपने में तरक्की करता है। जानवरों की तीन किस्में। एक जानवर कौन सा है? जैसे बकरी है, जैसे गाय है, जैसे भैंस है, जिसका काम यह है कि अपना खाओ, अपना पियो, पेशाब पखाना करो और अपने आराम से रहो, किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। उस जानवर की मां वहां भूखी हुई बैठी होगी और इसको खाना मिल गया है, ये खा लेगा, ये जानवर खा लेगा, पी लेगा, सो जाएगा, भला से मेरी मां मरे जी, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा खाना मुझे मिल गया, मेरा पीना मुझे मिल गया। ये जानवर जो दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं देते, अपना खाओ, अपना पियो और किसी का गम भी नहीं करते, ये पहली सिफत इस इंसान में होती है, जिसे आज आज पता नहीं मेरा ये जुमला सही है या नहीं, आज इंसान नुमा जानवरों में ये बात कही जाती है कि बहुत शरीफ आदमी है, अपना खाता है, अपना पीता है, अपनी दुकान करता है, अपने घर में पड़ा रहता है। ये इंसान की सिफत नहीं है, ये हैवान की सिफत है। अपना खाना, अपना पीना, अपनी फिक्र करना, ये अपने बच्चों की फिक्र करना, ये इंसान की नहीं है, ये हैवान की सिफत है। पहले दर्जे का जो हैवान है उसकी सिफत है। गाय यही करती है, बकरी यही करती है। लेकिन ये अगर फिर भी मेहनत नहीं करता और संभलता नहीं है, जैसे जमीन पर मेहनत करनी छोड़ दी, कुछ चीजें आई लेकिन मेहनत करना छोड़ देता है, फिर ये इंसान हैवानियत में तरक्की करता है, दूसरे नंबर पर चला जाता है। दूसरा नंबर हैवानों की वो किस्म है कि जिसे अपने नफे से मतलब है, मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा जो हैवानों की दूसरी किस्म है, मेरा पेट भरना चाहे चाहिए, कोई भी हो। एक लकड़हारा है, जंगल में गया है, लकड़ी काटता है, उस लकड़ी को उठाता है और उस लकड़ी को उठा करके बाजार में बेचता है, अपने 10 बच्चों का कुंबा है, उसे खाता है, उसे खाना ले जाकर के खिलाता है। लेकिन शेर ने उसे जंगल में देख लिया और उसे भूख लगी है, उसकी बला से इसके 50 बच्चे मरते हो जीते हो कोई बात नहीं, हमारा काम है हमारा पेट भरना, वो मारेगा पंजा, उसको वही खाकर खत्म कर दे, से कोई मतलब नहीं, मेरा मकसद पूरा हो जाना चाहिए। बच्चे की मां है जो बच्चे को दूध पिला करके जंगल में घास काटने गई है, उस शेर को यह मतलब नहीं है कि ये कौन है, इसका बच्चा रोएगा, इसका बच्चा बिलबिलाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है, सब हमारा पेट भरना चाहिए, तुम बर्बाद हो जाओ हो जाओ, उजड़ जाओ उजड़ जाओ। जब इंसान अपनी जात पर मेहनत नहीं करता तो हैवानियत की दूसरी किस्म यहां आती कि है इंसान नुमा लेकिन अंदर से ये शेर है, अंदर से ये चीता है, दूसरों के से अपना पेट भरता है, उसे कोई बला से कोई मरे ना मरे, अपनी चौधराहट बाकी रखने के लिए मुझे झोपड़ों के झोपड़े जलाने पड़े, जला दो, मैं बाकी रहना चाहिए। मालदार बनने के लिए मैं अपने भाई के हुकूक मारने पड़े, मारो। कौन है ये इंसान की शक्ल में शेर है, ये इंसान की शक्ल में चीता है। और भी अगर ये मेहनत नहीं करता फिर भी संभलता नहीं है तो हैवानियत में ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर के फिर क्या बनता है? उनका शैवानों की तीसरी किस्म एक है जिसका काम यह है कि हमको, जिसका काम है हमारा नफा हो या ना हो, हमारा फायदा हो या ना हो, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। ये सांप डसता है उसका पेट भरता है, बोलो, ये सांप डसता है उसका पेट भरता है, ये बिच्छू डंक मारता है और आदमी रात भर तड़पता रहता है और बाज लोग मर जाते हैं। इस बिच्छू से पूछो तेरा पेट भरा? कहना फिर क्यों किया तूने? तो बिच्छू जबाने हाल से कहता है हमारी मां ने हमको जनाई है दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के। जब इंसान अपनी जात पर मेहनत नहीं करता और अपनी जात को मेहनत का मैदान नहीं बनाता तो फिर ये इंसान नुमा सांप बनकर के जिंदगी गुजार रहा है, और उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई नहीं सिखाता। लेकिन जैसे जमीन खुद ब खुद बंजर होती चली जाती है वैसे ये इंसान बंजर होता चला जाता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, कल भी मैंने किसी जगह यही बात कही थी, परसों, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, बड़े अल्लाह वाले लोगों में से थे। हजरत का एक दुकान थी पान की, वहां हजरत आते जाते उसी दुकान से पान खाते थे। दुकान वाला हजरत का मोतकिद था, पान देता था, हजरत पैसे देते वो कबूल नहीं करता, हजरत दुआ फरमाते। एक दिन हजरत किस मूड में थे कि वहां उसने जब कहा कि हजरत पैसे नहीं, दुआ कर दी, हजरत ने दुआ की कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। एकदम से चौंका, पान बेचने वाला, इतने सालों से दुआ करा रहा हूं तो हजरत ने दुआ दी तो ऐसी कि मैं इंसान तो पहले से हूं, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। हजरत ने देखा कि ये बात समझा नहीं है, हजरत ने अपनी टोपी उठा करके उसके सर पर रख दी। अब जो उसने देखा कि सड़कों पर जाने वाला कोई शेर है और कोई चीता है और कोई सांप है और कोई बिच्छू है, हजरत के अलावा जो गुजर रहा है, बल्कि वो खुद भी, वो पान वाला खुद अपने आप को देख रहा है तो वो कोई जानवर है। हजरत ने टोपी उससे उठा ली और उसने हाथ जोड़ करके कहा हजरत दुआ कर लीजिए खुदा मुझे इंसान बना। मेहनत करें, हैवानियत तो है इंसान में, लेकिन अपनी जात पर अगर मेहनत करना छोड़ता है तो फिर हैवानी बढ़ता चला जाता है, जिसके नतीजे में माल के होते हुए, पैसे के होते हुए, दौलत के होते हुए, चीजों के होते हुए आज पूरी इंसानियत परेशान है। हर आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो ये समझता है पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है, कौन किस वक्त में मेरे साथ क्या मामला कर रहा है। मियां बीवी के लिए टेंशन, बीवी मियां के लिए टेंशन, बच्चे माँ बाप के लिए टेंशन, माँ बाप बच्चों के लिए टेंशन, क्या वजह है इनका? कोई वजह नहीं, इसने सब पर मेहनत की है, अपनी जात पर मेहनत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाए तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने मेहनत पर डाला, इंसान की फितरत में खुदा ने मेहनत रखी, मेहनत पर डाला। बीच में एक बात रह गई, जानवरों की तो ये तीन किस्में मैंने कही पूरी हो गई, एक तो गाय बकरी, दूसरे शेर चीता और तीसरे सांप बिच्छू, ये तो पूरी हो गई। लेकिन इंसान, इसके मुताबिक तो ये कहा है कल अनाम बल्कि मदल, ये तो जब मेहनत नहीं करता तो जानवर से ऊपर चला जाता है, और इसके अंदर में चौथी सिफत ये पैदा होती है कि मैं मिट जाऊं, मिट जाऊंगा, मैं अपने को मिटा दूंगा लेकिन तुझे मिटा के छोड़ूंगा, ये जानवर में सिफत नहीं। मेहनत तक करने वाला इंसान यहां तक पहुंचता है। और जिन्होंने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाकर इंसानों को बुनियाद बनाया कि तुम अपनी जात को मेहनत का मैदान बनाओ, कायनात नहीं अपनी जात को, मेरे अंदर में ईमान आ, सबसे पहले मैं अपने अल्लाह को पहचानूं, मेरा अल्लाह कौन है। हमने सबको जाना है, हमने सबको जाना है, हमने जमीनों की कीमतों को जाना है। किसी देहात में जमीन खरीदू तो एक बीघा में कितने, एक बीघा के कितने पैसे आएंगे, इससे बड़े शहर में करूं तो कितने आएंगे, इससे बड़े शहर में करूं कितने आएंगे, इसी को बंबई में लूं तो कितने आएंगे। जमीन के टुकड़ों को हम जानते हैं, एक एक चीज पर मेहनत की है तो उससे जानते हैं हमने मेहनत की है चीजों पर, करेंसियों को हम जानते हैं, कपड़ों को हम जानते हैं, कपड़ा हाथ में देखकर आदमी कह देता है, चीजों पर मेहनत की चीजें जानते हैं, हमने अपनी जात पर मेहनत नहीं। और हमारी जिंदगी का मौजू जो है वो हमारी अपनी जात है, इसलिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने तमाम नबी जितने आए उन्होंने पहली बात इंसान से यही कही है, अपनी जात को मेहनत का मैदान बना, या यूहन्नास कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, एक अल्लाह को पहचान, वो अल्लाह कौन है, वो कितना ताकतवर है, वो इज्जत के देने में किसी का मोहताज नहीं है, जलील करने में किसी का मोहताज नहीं है, मारने में किसी का मोहताज नहीं है, बचाने में किसी का मोहताज नहीं है, वो अल्लाह इतना बड़ा है, बैक वक्त पूरी दुनिया की सारी मखलूकात को हर एक को उसके उसके हर एक की रोजी उसको दे रहा है। दाना चुगने वालों को दाना दे रहा है, घास खाने वालों को घास दे रहा है, मटन खाने वालों को मटन दे रहा है, और बगैर दुकान और खेत के दे रहा है, बगैर कारोबार के दे रहा है, बड़ी बड़ी मछलियां जो टनों के हिसाब से खाती है रोजाना टनों के हिसाब से, बगैर और दुकान खेत के उन सबको दे रहा है। कभी भी जानवर मछलियां भूख के मारे समंदर में नहीं मरी हुई मिलती, कभी भी जंगलों में जानवर भूख के मारे मरे हुए नहीं मिलेंगे। सबको, सबकी तादाद को जानता है कितने जानवर है, सबकी रोजी को बैक वक्त पहुंचा रहा है, जो खाता है वो दे रहा है। इस इंसान से का पहचान अल्लाह, तू अपने आप को समझता है कि तेरी दुकान खेत के बगैर खुदा तुझे नहीं पालेगा, इतने बड़े बड़े जानवरों को बगैर दुकान खेत के पाल रहा है। इन इंसानों में बहुत बड़ी तादाद वो है जो बगैर मेहनत के खा रही है, सोच तो सही, तू ही नादा ये समझ रहा है कि मेहनत से मैं पल रहा हूं। दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतें, औरतों से ज्यादा बच्चे, ये सारे बच्चे बगैर दुकान खेत के खा रहे हैं, हमसे अच्छा खा रहे, सारे बीमार खा रहे बगैर दुकान खेत के, अच्छा खा रहे हैं, इसरार के साथ खा रहे हैं। वो अल्लाह, उस अल्लाह को पहचानने की मेहनत कर, उस अल्लाह की जात का यकीन अपने अंदर में उतार, अपनी जात पर मेहनत कर, मेहनत करते करते अंदर का तेरा यकीन बदल जाए। पहली चीज है, जब इंसान अपने आप पर मेहनत करना शुरू करता है तो पहली चीज क्या होती है, वो हैवानियत से निकल करके फरिश्तों की जमात में आ जाता है। अब ये ऊपर चला, मेहनत नहीं करता नीचे जाता है हैवानों के किस्मों में। जब अपनी जात पर मेहनत करना शुरू करता है तो पहली चीज इसके अंदर में आती है इबादत, ये नमाज का पढ़ने वाला बनता है, ये तस्बीह का पढ़ने वाला बनता है, ये कुरान का पढ़ने वाला बनता है, ये अल्लाह का जिक्र करने वाला बनता है, ये अल्लाह रात को उठकर अल्लाह को याद करने वाला बनता है। तो क्या हुआ, इनके हैवानियत सब ये तरक्की करके फरिश्तों की सिफत पे आ गया। तो फरिश्तों की क्या सिफत है, तो फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान करते, फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करते, فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی صفات ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم کیا ہے وہ بجا لاتے. فرشت اب یہ فرشتوں کے صف میں آ رہا ہے, اب یہ نماز پڑھ رہا ہے, قیام میں ہے, تو ساتوں آسمان پر کوئی, کسی آسمان پر سارے فرشتے قیام میں ہیں. اب یہ زمین پر ہے لیکن اس کی نسبت اس فرشتوں سے ہو رہی. اب یہ رکوع میں گیا تو ہے تو اپنے گھر کی چھوٹی سی کوٹھڑی میں یہ رکوع کر رہا ہے لیکن اس کی نسبت ان آسمان کے فرشتوں سے ہو رہی ہے جو سارے فرشتے رکوع میں. اب یہ فرشتوں کے صفات میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. عبادت جہاں اس کی زندگی میں آئی, اب یہ حیوانیت سے نکلا, فرشتوں کی صفات پہ آیا. اور عبادت نہیں ہے اس کی زندگی میں, نماز نہیں ہے, اب یہ چاہے کتنا بھی اچھا گورا نظر آتا ہو لیکن یہ حیوانیت سے نکلا نہیں, حیوانیت سے انسان کو ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ عبادت. یہ عبادت سے ممتاز ہوگا حیوانیت سے نکلے گا. لیکن فرشتہ کی ایک حد ہے, اس سے آگے فرشتہ نہیں بڑھتا. فرشتہ 50,000 سال تک سجدے میں اپنا سر رکھے, فرشتہ ہی رہے گا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اس انسان میں اللہ نے تیسری نسبت رکھی ہے, جب یہ فرشتوں کی صفات سے گزرا اور پھر محنت کر رہا ہے اپنی ذات پر, تو تیسری چیز اس میں یہ آئے گی, یہ زمین کی پیٹھ پر ہوگا اور اللہ کا خلیفہ بن کر کے ہوگا. فرشتہ کبھی اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا, یہ زمین کی پیٹھ پر ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے, اس کے اندر میں یہ صفت آئے گی, یہ خود بھی کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا. اللہ پہنتا نہیں پہناتا ہے, چونکہ یہ انسان ہے اس لیے یہ پہنے گا بھی اور دوسروں کو پہنائے گا بھی. اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں, یہ انسان ہے اس کو مکان کی ضرورت ہے, یہ اپنا مکان بھی بنائے گا دوسروں کا مکان بھی بنائے گا. اللہ کو کسی جوڑے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ انسان ہے اس کو شادی کی ضرورت ہے, یہ اپنی شادی بھی کرے گا اور ہزاروں بیواؤں کی بچیوں کے اور ہزاروں یتیم بچوں کی شادیوں کا یہ فکر بھی کرے گا. کہ زمین کی پیٹھ پر ہے اور اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزار رہا, دوسروں کے کام آنا. نہیں بنتا تو کیا ہے, ان کا وہ حیوان ہے, حیوان کی قسم کیا ہے, ہماری ماں نے ہم کو جنا ہے دوسروں کو دکھ دینے کے لیے, اور یہ جب اس راستے پر محنت کرتا ہے تو ثابت کرتا ہے میری ماں نے مجھے جنا ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے. یہ رات کے اندھیروں میں غریبوں کو ڈھونڈتا ہے, یہ مجموع میں غریبوں کو ڈھونڈتا ہے, محتاجوں کو ڈھونڈتا ہے, آتے جاتے لوگوں کے کام آتا ہے. کوئی مطلب نہیں یہ کون ہے, مسلمان ہے غیر مسلم ہے, کس قوم کا ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے, الخلق عیال اللہ. اور میرے رب نبی نے فرمایا ہے خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بھلا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچا. یہ اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں زندگی گزار, ظاہر میں کون ہے, ان کا انسانی ڈریس میں, لیکن آسمانوں میں اسے اللہ کا خلیفہ لکھا جا رہا ہے, آسمانوں میں اس کے تذکرے اللہ کے خلیفہ میں. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مہر ہونے کی برکت سے اس امت کو چوتھی نسبت ملی ہے. جب یہ اللہ کا خلیفہ بنتا ہے تو پھر اس کو اللہ آگے بڑھاتا ہے, محنت کرتا ہے کہ ختم نبوت کی نسبت اس کے اندر میں زندہ ہوتی ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر دنیا میں زندگی گزارتا. کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا کے انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بھوکا ہے, بھوکے کو ابھی کھانا کھلا دیا, پیٹ اس کا بھر گیا, 4 گھنٹے کے بعد اس کو پھر بھوک لگے گی, لیکن وہ بھی کھلاتا بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا غم اور ہم یہ تھا کہ لوگوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اگر دین زندہ نہ ہوا تو کھاتے پیتے یہ جس دن مرے گا تو جہنم کا ایندھن بنے. اور یہ دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر, یہ راتوں کو روتا ہے تو امت کے لیے روتا ہے, یہ بے نمازی کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے, یہ کسی مہمان کا اور غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں, میں نے محنت نہیں کی, یہ آدمی ہاتھ سے نکل گیا, اب ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی ذات پر محنت کرتا ہے تو حیوانیت سے فرشتہ, فرشتے سے خدا کا خلیفہ, اور خدا کے خلیفے سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر زندگی گزار رہا. اور اگر اپنی ذات پر محنت نہیں کی اور کائنات پر محنت کرتا رہا, چیزوں پر محنت کرتا رہا, میں لکھ پتی بن جاؤں, میں کروڑ پتی بن جاؤں, میرے کارخانے بڑے ہو جائے, میرا دھندا بڑا ہو جائے, میرے پیسے زیادہ ہو جائے, میرا مکان مضبوط ہو جائے, اس پر محنت کرتا رہا, تو میرے دوستو وہ چاہے یا نہ چاہے, وہ چاہے یا نہ چاہے, وہ ارادہ کرے یا نہ کرے, یہ حیوانیت میں بڑھتا چلا جاتا. اور زندگی اپنی حیوانیت کی بروڑو ہی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا ہے, کچھ نہیں. تم نے راستہ ہی وہ لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, او میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے محنت کی صفت دی, اس محنت کی صفت کو اپنی ذات پر لگاؤ, میں بنوں, میرا ایمان بنے, میرے رب کا تعلق بنے, میرا اللہ سے تعلق پیدا ہو. کیا کیا ہم نے اس کے لیے؟ ہم نے تو ابھی اللہ کو نہیں پہچانا. بہت سالوں پہلے میں یہاں آیا تھا اور یہاں کے اجتماع میں میں نے اس بات کو کہا تھا, اس بات کو کھولا تھا کہ اس سے پوچھو, زمین والے سے پوچھو تو زمین کی ایک ایک چیز بتائے گا, تاجر سے پوچھو تو وہ ایک ایک چیز بتائے گا, اس کا اتنے پرسنٹ نفع, اس میں اتنے پرسنٹ, اس میں اتنے پرسنٹ. دنیا کی چیزوں کی ایک 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 مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں یو پی میں وہ تیل کی گھاڑی چلتی ہے, وہاں کھڑے رہے تھوڑی دیر کے لیے. وہ گاڑی والا بالکل جاہل آدمی تھا, کچھ نہیں, علی بابی اسے نہیں آتا. میں کھڑا رہا وہاں, میں نے پوچھا بھائی جان ایک من میں سے کتنا تیل نکلے گا؟ فوراً اسے بتا دیا. ایک شیر, ان کا شیر جو ہوتا تھا اپنے کلو والا ہوتا تھا, ایک شیر میں اتنا, ایک پاؤں میں 250 گرام کو پاؤ کہتے تھے اس زمانے میں, یہ گرام نہیں شروع ہوا تھا, اتنا نکلے گا. ہوتے 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 نیچے آیا میں, اور نیچے آ کر میں ایک تل کا, تل کا ایک دانہ اس میں سے کتنا نکلے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ناخن جو ہے اس کے اوپر اس کو توڑو تو یہ تر نظر آئے گا. اپنی دنیا کا جاہل اتنا واقف تھا. ہم لوگوں نے اس پر محنت کی ہے تو اس کی ایک ایک چیز کے ہم واقف ہیں. لیکن کسی سے پوچھو اللہ کون, اللہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کون اللہ؟ ذرا اللہ بتا کون. اللہ کون؟ اللہ اللہ. بھائی کون اللہ؟ اللہ. اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی. جس اللہ نے قرآن میں ہو الذی رفع السماء ہو الذی خلق, وہ اللہ جس نے آسمان بنائے, جس نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا, اس نے دنیا کو بولا ہے تو دنیا کی باتیں تو بے تکلف بتا دیتا. تاجر اپنی تجارت کو, زارع اپنی زراعت کو, مزدور اپنی مزدوری کو, دنیا کے پتہ نہیں کیا کیا فلسفوں کو بول دے گا. اس پر محنت کی اور نہیں محنت کی تو اپنے اللہ کی تعریف یہ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کون؟ اس اللہ کو پہچانا نہیں, اس اللہ کی بڑائی کو اس نے جانا نہیں ہے, اس لیے اللہ سے نہیں ڈرتا. جب جان لے گا اللہ کی بڑائی کو پھر یہ گھبرائے گا. کون میرا اللہ کتنا طاقتور ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر یہ اپنے صحیح حلیے پر کھڑے ہو جائے تو پاؤں تو ہوں گے ساتوں زمینوں کے نیچے اور سر ہوگا सातों आसमान से ऊपर। अल्लाह ने 600 पर दिए हैं, जो पर को बाजू में फैलाए तो एक पर उत्तर के आखिरी कोने तक और एक दक्षिण के आखिरी कोने तक। इतना बड़ा भारी फरिश्ता, इतना ताकतवर फरिश्ता था कि जिस वक्त अल्लाह पाक ने कौम लूत को हलाक करने का इरादा किया है, जिब्राइल को भेजा, इसे उलटता है। जिब्राइल जब आए हैं 600 परों में से एक पर खोला और एक पर का किनारा, इस किनारे पर 5 बस्तियों को उठाया और इतना ऊपर ले गए हैं कि इन बल्कि इस बस्ती के मुर्गों की आवाज आसमान के फरिश्तों ने सुनी। इतना ऊपर ले गए और वहां से उसे पलट मारा। इतना बड़ा फरिश्ता वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बड़ाई को जब सोचता हूं तो सुकड़ता जाता हूं। इतना छोटा 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 होते होते छोटे से छोटा जो परिंदे या जानवर होता है उससे भी मैं छोटा हो जाता। हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, हमने अल्लाह को जाना नहीं है, हमने अल्लाह की तारीफें नहीं की है, हमने अल्लाह की बड़ाई को बोला नहीं है, इसलिए हम सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। हम भूख से डरते हैं, हम प्यास से डरते हैं, हम जलजलों से डरते हैं, हम तूफानों से डरते हैं, हम जंगों से डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, हम ताकतवर दादा से डरते हैं, इसको हमने बोला है, हम अल्लाह से नहीं डरते। हुकूमत का कोई कानून तोड़ना हो तो 10 मरतबा सोचता है और अल्लाह के किसी फरमान को तोड़ना हो तो जैसे पापड़ तोड़ता है इस तरीके से तोड़ देता है। क्यों? इसलिए अल्लाह को पहचाना नहीं। आदमी जिसको जानता नहीं उससे डरता नहीं। आपका छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसने आपने सुबह सीधा रहे पुलिस को बुलाता हूं, फोन करके पुलिस को बुला भी लिया, पुलिस आकर बैठ भी गया, पुलिस के हाथ में पिस्तौल है, लेकिन बच्चा उसी पुलिस वाले की गोद में जाकर बैठकर उसके पिस्तौल से खेलेगा। इसलिए पुलिस को जानता नहीं, पुलिस की ताकत को नहीं जानता। वो जानता किसको है? वो डरेगा कहां? जरा पीछे से, पर्दे के पीछे से उसकी मां ने सीधा से समझाए। मां को जानता है, मां के थप्पड़ को जानता है, सीधा बैठेगा। हम दुनिया की चीजों को जानते हैं, हमने मेहनत तय की, हम अल्लाह को नहीं जानते, उस अल्लाह के कहर को नहीं जानते, उस अल्लाह के गजब को नहीं जानते। जब अल्लाह को नहीं जानते तो उसके अवामिर भी हमारी जिंदगी में नहीं। एक दिन मौत आएगी दोस्तों, मुझे और आपको मरना है, और सारा मसला उस तने तनाव उस अल्लाह के हाथ में। न हमारी बीवी हमें बचा सकेगी, न हमारे बेटे बचा सकेंगे। मौत के वक्त में उस चारपाई पर पड़े होंगे हम, चारों तरफ अपने बेटे, उनकी बहुआ, उनके हमारी बेटियां, हमारी बीवी, ये खड़े खड़े आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन एक भी हमें मरने से नहीं बचा सके। खुदा रा मेरे भाइयों संभलो। अल्लाह ने जौहर दिया है मेहनत का, उसको अपनी जात पर ईमान के बनाने में और आमाल की जिंदगी में लाने के लिए लगाओ। फिर देखो आपके जौहर का क्या, आपकी जबान की क्या ताकत है, वो अल्लाह का बन कर देखो। फिर आपकी ठोकर में क्या ताकत है, वो अल्लाह का बन कर देखो। उमर फारूक के जमाने में जलजला आया, जहां बैठे थे वही जमीन पर लात मारी और कहा ठोक, तेरी पीठ पर मैंने जुल्म नहीं किया है। उमर की वो ठोकर के ऊपर ही जलजला रुका है। और मौरखीन ये कहते हैं कि उमर के दुनिया से जाने तक दोबारा पूरी दुनिया में कहीं जलजला नहीं आया। अल्लाह से जुड़ कर देखो आप में क्या ताकत है, आपकी इस जबान में क्या ताकत है, आपके इस हाथ में क्या ताकत है। इसलिए ये मेहनत है, ये इज्तिमा बयान सुनाने के लिए नहीं, एक मेहनत का नाम है। संभलो चारे, कल बच्चे थे, जवान हो गए, शादी हो गई, कल बूढ़े हो जाए। बचपन में जितने कमजोर थे बुढ़ापे में इतने कमजोर हो जाएंगे और दुनिया छोड़ दे। सारी मेहनत करके जितनी दुनिया जमा की है एक चीज हमारे साथ नहीं जा रही। अगर मोहब्बत के मारे 200 500 किलो सोना अगर कोई लाकर के कब्र में रख देगा हम सड़ जाएंगे, बाद में जो कब्र खोदेगा उसको वो सोना मिल जाए, हमारे किसी काम का वहां नहीं होगा। एक कुर्ता नहीं ले जा सकेंगे हम, ये चश्मे जिसके बगैर नहीं चलता ये चश्मे भी निकाल दिए जाएंगे सारा मैं, और मेरे साथ भी होगा आपके साथ भी। और वो ये हमारे हमारे हाथों से जो आमाल हमने किए हैं, किसी को गिलास भर के पानी पिला दिया है, किसी यतीम के बच्चे पर सर रखा है, किसी रोने वाले के आंसू पूछे हैं, किसी को तसल्ली जबान से दे दी है, किसी के काम आए हैं, रात को उठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, रात को उठकर के किसी मोहताज के लिए मांगा है, रात को दुआएं मांगी है, अल्लाह के रास्ते में निकल करके इस बदन को, इस हाथ को, इस पांव को थकाया है, वो जो हमारे बदन से आमाल पर हमने बनाए हैं, दुनिया के सारे हमारी औलाद, हमारा खानदान, हमारा सूबा, हमारा मुल्क और पूरा आलम बनकर के हमारे बदन से निकलने वाले आमाल की एक नेकी को छीनना चाहेंगे तो नहीं छीन सकते। एक नेकी नहीं छीन सकते, जैसे एक पैसा साथ नहीं ले जा सकता, हमारी कमाई हुई नेकी एक भी नहीं छीन सकता, वो हमारी, वो हमारी, वो हमारे साथ जाएगी। मेरे भाई मुकद्दर की रोजी मिल जाए करती, इसलिए जिंदगी को सुन्नत पर लाओ और दुनिया में खुशगवार जिंदगी जो मिलती है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, इसके अलावा कहीं नहीं। निकाह क्या है, हमने क्या बना दिया इसे, हमने अपनी जहालत की वजह से निकाह को क्या बनाया, हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। निकाह की इबादत है जैसे नमाज की इबादत है, तो हिंदुस्तान की नमाज और अरब की नमाज अलग है, हिंदुस्तान वालों का हज और अरब वालों का हज अलग है, हिंदुस्तान वालों के रोजे का वक्त और अरब के रोजे का वक्त अलग है, तो इबादत है। और इबादत तो ऐसी ही होती है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, चाहे कोई भी हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, सुबह सादिक पर इसे खाना बंद करना है, गुरुब आफ्ताब के बाद इसे खाना शुरू करना है। इबादत में कौमी तरीका नहीं होता, इबादत में मुल्की तरीका नहीं होता, जैसे नमाज इबादत, जैसे रोजा इबादत, जैसे हज इबादत, वैसे निकाह इबादत है। निकाह इबादत है और लंबी चौड़ी इबादत है ये, और इबादतें नमाज की नियत बांध दी, 5 मिनट में नमाज पूरी कर दी, इबादत पूरी हो गई, किसी ने आधा घंटा की इबादत की, नमाज लंबी की पूरी हो गई, 1 घंटा की पूरी हो गई, सलाम फेरने पर नमाज की इबादत पूरी हो गई, रोजा इफ्तार पर इफ्तार किया, रोजे की इबादत 15 घंटे पर पूरी हो गई, हज का एहराम बांधा 8 तारीख को, 12 तारीख को एहराम खोला, हज पूरा हो गया। निकाह एक ऐसी इबादत है जो आम तौर पर जवानी नौजवानी में शुरू होती है और मौत पर जाकर पूरी होती है। इबादत में है, हम जितने निकाह वाले हैं इबादत में है, निकाह इबादत है। निकाह की बुनियाद क्या है, ये तस्कुरु इलैहा, कुरान कह रहा है कि इस निकाह में खुदा ने सुकून रखा है, मियां बीवी के लिए और बीवी मियां के लिए, सुकून की चीज है। इस निकाह की बड़ी चीज बरकत है, इसलिए निकाह के बाद दुआ दी जाती है, बारक अल्लाहु लक बारक अल्लाहु अलैक, बरकत की दुआ दी जाती है। बरकत के माना इतने छोटे नहीं जो उर्दू में है, 2 का खाना 4 को काफी हो गया, नहीं, बरकत के माना असल माना यह है जिस चीज को जिस काम के लिए लाया है उसका नफा हासिल हो। बीवी शादी की है सुकून के लिए, बीवी सुकून की चीज बने, बच्चे ने शादी की है सुकून के लिए, मियां उसके लिए उसकी ढाल बने और उसके लिए सुकून की चीज बने। لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت نہیں کی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ اس نکاح میں برکت چاہیے, اور برکت آئے گی کہاں سے؟ فرمایا عازم النکاح ہے برکت ایسرہ معونا, بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. میرا نبی تو یہ کہہ رہا ہے. اور دنیا کے اندھی قوموں کو دیکھ دیکھ کر کے, گمراہ قوموں کو دیکھ دیکھ کر کے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے اور قوموں کا پیروی کر کے یہ مال جتنا خرچ کرتا چلا جاتا ہے گھر میں سے برکت نکالتا چلا جاتا ہے. یہ اندھا ہے, یہ اندھا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں. بیٹے کی زندگی کو باپ برباد کرتا ہے, باپ اپنی نادانی سے بیٹے کی زندگی میں ایسیڈ جو ڈالتا ہے وہ باپ ڈالتا ہے, اور بیٹے ماں بیٹی کی زندگی میں ایسیڈ ڈالنے والی ماں ہے. کہ یہ برکت کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی بن جاتی, لیکن باپ نے اپنی محبت میں اپنی نادانی میں, اور کیوں کیوں ارے دنیا کو پتا چل جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے اپنے بیٹے کے نکاح میں اتنے کروڑ روپے خرچ کیے, اس لیے کوئی نہیں ملا تیرے کو ذبح کرنے تیرے بیٹے کے سوا, اپنا نام بلند کرنے کے لیے. دنیا کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بچی کی ماں نے اتنا جہیز دیا تھا. جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ نکاح زندگی کی اوپننگ ہے. اگر نکاح نہ ہو تو یہ آج 15 کا ہے, 25 کا ہوگا, 35 کا ہوگا, 50 کا ہوگا, 70 کا ہوگا, مر کر چلا جائے گا, ختم ہو گیا. یہ لڑکی آج 25 کی ہے, 50 کی ہوئی, 60 کی ہوئی, مر کر ختم ہو گئے, ختم ہو گیا بات, کوئی تذکرہ نہیں اس کا. نکاح کیا ہے؟ ایک سے دو ہوئے, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ, پھر آگے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مر کر دنیا سے جاتا ہے یا عورت جب دنیا سے مر کر جاتی ہے تو بیٹے پوتے پوتیاں نواسے کتنے چھوڑ کر گئے, 150 پیچھے چھوڑ کر گئے. یہ ان دونوں کی زندگی کی اوپننگ ہے. کیا اپنی دکانیں گناہیں کر کے اوپننگ کرتے ہو؟ اپنے کارخانے گناہ کر کے اوپننگ کرتے ہو؟ جہالت کی وجہ سے, محنت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی خود اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہاتھ جوڑ جوڑ کر, پاؤں پکڑ پکڑ کر, خوش آمدیں کر کر کے محنت کر رہے, آؤ آؤ اجتماعات میں, آؤ جماعتوں میں نکلو, اپنی ذات پر محنت کرو. آنکھ کھلے گی, تمہیں پتہ چلے گا کون کیا کیا ہمارا ہے اور کیا ہمارا نہیں پھر زندگیوں میں, ورنہ خود آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی ہلاکت کا اسباب پیدا کرے. اس لیے اللہ سے مانگو اور ترتیبیں بناؤ زندگیوں کی, کرو گے اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اب ایک بات سن لو, یہ نکاح عام طور پر ذہنوں میں خود غرضی کی وجہ سے آتا ہے, یہ کسی کا ہوگا نہیں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے. اس میں ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کی خوشی میں شریک ہو, اس کو مبارکبادی دو. یہ بچہ کسی اور کا نہیں, میرا آپ کا ہے, یہ بچے کسی اور کے نہیں. اس نکاح میں بیٹھو, نکاح کے بعد میں دعا اور دے کر کے پھر اس کے بعد اپنی ضروریات کے لیے جاؤ.